हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। पुश्तैनी बंगले से आदित्य के घर का रास्ता काफी ज्यादा दूर है और अभी भी उनकी कार रास्ते में है। वे दोनों अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं और तभी एक बहुत तेज आवाज होती है, एकदम अजीब सी, और गाड़ी को एक तेज झटका लगता है जिसकी वजह से सुनैना और आदित्य दोनों ही अपनी सीट से आगे हो जाते हैं। लेकिन आदित्य खुद से पहले सुनैना को पकड़कर संभाल लेता है और फिर वे दोनों एक दूसरे की तरफ कन्फ्यूजन से देखते हैं। उन दोनों को ही नहीं पता कि क्या हुआ, वो तेज आवाज किस चीज की थी और एकदम से कार इस तरह झटके के साथ रुक कैसे गई। आदित्य ने आगे बैठे ड्राइवर से तुरंत ही पूछा, क्या हुआ भैया, इस तरह से रास्ते में कार क्यों रोक दी? यह आवाज टायर पंचर हुआ है क्या? आदित्य को कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया था कि इस तरह की तेज आवाज जरूर टायर पंचर होने की ही है, इसलिए उसने ड्राइवर से ये बात पूछी। तो ड्राइवर ने भी उसी तरह से कन्फ्यूजन में अपना सिर हिलाते हुए बोला, यस सर, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, जरूर टायर ही पंचर हुआ होगा, तभी इतनी तेज आवाज होती है, मैं अभी देखता हूँ। इतना बोलते हुए आदित्य का ड्राइवर कार से बाहर उतरा और आदित्य वहां आसपास का एरिया देख रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चलती हुई रोड नहीं है, वो एक सुनसान सी सड़क है जहां बहुत ही कम लोग नजर आ रहे हैं। अभी शाम नहीं हुई है लेकिन फिर भी सूरज ढलने वाला है, क्योंकि शायद 4 या 5 बज रहे होंगे और वहां पर दूसरी गाड़ियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही कम नजर आ रहा है। सुनैना आदित्य की तरफ देखकर बोली, ये टायर कैसे पंचर हो गया इसी बीच रास्ते में अचानक से, और कितनी देर लगेगी हमें घर वापस पहुंचाने में? वो काफी ज्यादा इरिटेट लग रही है क्योंकि पिछले 1 घंटे से वो लोग रास्ते में ही हैं और सुनैना कार में बैठे बैठे काफी ज्यादा थक गई है। उसे पार्टी की भी बहुत ज्यादा थकान हो गई है क्योंकि सारी प्रेपरेशन भी कल उसने ही की थी और फिर पार्टी के लिए तैयार हुई। उसके बाद वो इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होकर सोई थी कि अगली सुबह इतनी देर तक सोने के बाद भी उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई और अभी भी उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है क्योंकि वो काफी सारी बातें सोच रही थी। ऐसे में बीच रास्ते टायर पंचर हो गया तो उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन उससे भी ज्यादा इस वक्त आदित्य टेंशन में है क्योंकि उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। ड्राइवर ने चेक करते हुए बाहर से ये तेज आवाज में चिल्लाकर आदित्य को बताया, सर कार के अगले टायर पंचर हो गए और उसे चेंज करना होगा, लेकिन हमारे पास एक ही टायर है और आगे के दोनों टायर पंचर हो गए, लेकिन एक ज्यादा डैमेज है तो बस उसे चेंज करता हूँ मैं। उसकी बात पर आदित्य ने धीरे से अपना सिर हिलाकर उसे हाँ में सिग्नल दिया और फिर अपने मन में सोचने लगा कि इस तरह एक साथ कार के दोनों टायर पंचर होना तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और ये सब कुछ सोचकर सारी बातें उसके दिमाग में खटक रही हैं। लेकिन वो ज्यादा देर नहीं चाहता कि उनकी कार वहां ऐसे सुनसान रास्ते पर खड़ी रहे, इसलिए वो सुनैना को समझाकर खुद कार से बाहर उतरा ड्राइवर की हेल्प करने के लिए, जिससे कि कार का टायर जल्दी चेंज हो जाए। सुना, तुम कार से बाहर मत निकलना, मैं बस अभी ड्राइवर भैया की हेल्प करके आता हूँ, उन्हें अकेले टायर चेंज करने में प्रॉब्लम होगी ना? सुनैना को बहुत ही प्यार से इतना समझाते हुए आदित्य अपनी तरफ का कार का डोर खोलकर बाहर निकला। लेकिन उसकी हिदायत पर सुनैना ने बड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन क्यों, मैं बाहर क्यों नहीं आ सकती? प्लीज ये मत बोलना कि कोई सेफ्टी इशू है, यहाँ पर भला कौन हो सकता है, और मैं जब तक क्या करूंगी यहाँ पर अंदर बैठकर, यही बस बाहर निकलकर खड़ी हो जाती हूँ और देख लूंगी टायर चेंज होते हुए, मैंने कभी नहीं देखा। आदित्य ने बहुत ही विश्वास भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली सोना, तुम्हें ये सब मजाक की बातें लग रही हैं और तुम्हें अभी टायर चेंज होते देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि सच में सुनैना ने खुद उसके सामने ऐसी बेवकूफी भरी बात बोली। लेकिन दूसरी तरफ सुनैना कार से बाहर निकलने के लिए बस किसी भी तरह का बहाना बना रही है, फिर चाहे वो जितना भी स्टूपिड क्यों ना साउंड करे। सुनैना आदित्य से एकदम ही रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आदि प्लीज ना, इतनी देर से कार में बैठे बैठे मेरी पीठ भी अकड़ गई है, बस थोड़ा सा बाहर निकलकर 1-2 कदम ही चलूंगी और फिर मैं यहाँ कार के पास चुपचाप खड़ी रहूंगी, प्लीज मैं बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाऊंगी, मुझे पता है तुम मेरी सेफ्टी को लेकर ही सोच रहे हो ना, आई नो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। इतना बोलते हुए सुनैना ने बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाया तो फिर आदित्य भी उसे मना नहीं कर पाया और वो भी उसके साथ ही कार से बाहर निकल आया। और बाहर आकर सुनैना ने अंबराई ली क्योंकि सच में इतनी देर से कार में बैठे बैठे उसकी पूरी बॉडी जैसे अकड़ गई थी और अब उसे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। वो कार के आसपास ही इधर उधर चल रही है और आदित्य उसकी तरफ देखते हुए वहां से आगे कार के फ्रंट साइड की तरफ बढ़ा क्योंकि स्टेपनी और टायर बाकी सारा सामान लेकर ड्राइवर पहले ही वहां पर पहुंच चुका है। आदित्य ने सुनैना को वहां आसपास ही रहने के लिए कहा तो सुनैना ने उसकी बात पर हाँ में अपना सिर हिलाया और इधर उधर देखती हुई वहां कार से टेक लगाकर ही खड़ी हो गई। वहां देखने के लिए ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन फिर भी सुनैना को बाहर निकलकर अच्छा लग रहा है क्योंकि शाम के उस वक्त ताजी ठंडी हवा चल रही है और उस एरिया में भीड़ कम होने की वजह से वो हवा उसकी पूरी बॉडी पर फील हो रही है, इसलिए अपने हाथ सामने की तरफ बांधते हुए सुनैना कार से टेक लगाकर खड़ी हो गई और उसने अपना सिर पीछे की तरफ करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य आगे पहुंचा और वो ड्राइवर की टायर चेंज करने में हेल्प करने लगा और टायर अभी पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ था, तभी आदित्य का मोबाइल फोन रिंग हुआ। उसने ड्राइवर की तरफ देखा तो बस पेंच टाइट करना ही बचा था, इसलिए आदित्य ने सोचा ड्राइवर इतना काम अकेले भी कर सकता है, और उसने वहां से हटकर थोड़ा सा साइड में आते हुए वो कॉल रिसीव कर ली। आदित्य ने जैसे ही कॉल रिसीव की, उसे दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, और उसे इस वक्त बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़की उसे कॉल करेगी, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान रह गया। दूसरी तरफ से एकदम बनावटी भारी सी लड़की की आवाज़ फ़ोन पर गूंज रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़की एकदम खाली जगह पर खड़ी हुई। हेलो माई लव, कितना इग्नोर करोगे मुझे? तुम थकते नहीं हो? मेरे 25 से ज्यादा नंबर तुमने ब्लॉक कर रखे होंगे, और मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगले और 25 नंबर लेकर उनसे तुम्हें मैसेज करने का, क्योंकि अपना प्यार तुम्हें दिखाने का बस यही एक रास्ता है फिलहाल मेरे पास। आदित्य को पहले तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है, और फिर उसकी इस तरह की बातें सुनकर आदित्य को बहुत ही डिस्गस्टेड फील हुआ, और उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, हो कौन तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत सीधा कॉल करके ये सब बोल रही हो? एक नंबर की बेशरम लड़की हो तुम, जो कोई भी हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लव कहकर बुलाने की? मैं शादीशुदा हूँ और पहले ही अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए अगर अपनी सलामती चाहती हो तो आज के बाद कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट मत करना, गुड बाय। अरे अरे, तुम नाराज हो रहे हो? और रुको, मेरी बात तो सुनो, और अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। उस लड़की ने एकदम ही हाइपर होते हुए दूसरी तरफ से ये बात बोली, तो आदित्य जो कि बस कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाला था, आखिर बात सुनकर रुक गया, और उसकी नज़र सामने खड़ी सुनैना पर टिक गई, जो इन सारी बातों से बेखबर बड़े ही आराम से वहां पर खड़ी हुई थी।
क्या बकवास कर रही हो? मेरी बीवी का नाम भी मत लेना अपने मुंह से, और उसके बारे में ऐसा कुछ भी सोचा ना तो फिर ये जो बकवास कर रही हो ना, ये करना तो दूर, बोलने के लायक भी नहीं बचोगी तुम। जो कोई भी हो, इतना जान दो मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बंद करो अपना ये पागलपन और मुझे शांति से जीने दो, आदित्य बहुत ही ज्यादा परेशान होता हुआ बोला। तो उसकी इस बात पर दूसरी तरफ से वो लड़की बहुत ही ज्यादा तेज आवाज में एकदम किसी पागल की तरह हंसने लगी। मजाक अच्छा कर लेते हो, आई रियली लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे ना ऐसे ही गुड सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग ही पसंद आते हैं, और देखो इसीलिए तो तुम पसंद आए हो मुझे। वैसे तो और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन फिलहाल उसे बारे में बाद में बात करेंगे, और अभी बात करते हैं तुम्हारी प्यारी पत्नी सुनैना अग्रवाल के बारे में। यही नाम था ना उसका शादी से पहले? हंसना बंद करके एकदम ही सीरियस आवाज़ में दूसरी तरफ से वो लड़की बोली, तो उसकी बात सुनकर आदित्य थोड़ा सा घबरा गया। वो तुरंत ही भागकर सुनैना के पास जाना चाहता है, लेकिन उसे पता है सुनैना के सामने वो इस तरह कॉल पर बात नहीं कर पाएगा, इसीलिए ही वो बस थोड़ी दूर पर खड़ा होकर उस तरफ देख रहा है। उसकी नज़रें सुनैना पर ही जमी हुई हैं, लेकिन उस लड़की की ऐसी पागलपन भरी बातें भी आदित्य के दिमाग में काफ़ी टेंशन पैदा कर रही हैं, और उसे थोड़ा सा डर लगने लगा है, लेकिन उसने अपना डर पूरी तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और एकदम खुद पर कंट्रोल रखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कुछ बता जी तो मैं डर जाऊंगा? मेरी वाइफ अब कंपनी की मालिक है, और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर किसी को भी आराम से मिल जाएगी, तो ये मत सोचना कि ये बात कर तुम मुझे डराने में कामयाब हो जाओगी। ओहो, एक तो इंटेलिजेंट लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो सारे दूसरे लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं ना बेबी। लेकिन ना मुझे बेवकूफ़ समझने की गलती मत करना, क्योंकि वो क्या है ना, मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन भी पता है जो इंटरनेट पर तो क्या किसी को भी नहीं पता है। कहूँ तो अभी बताती हूँ, वैसे बता ही देती हूँ, नहीं तो कहाँ तुम्हें मुझ पर यकीन होगा, उस लड़की ने थोड़ी सी इरिटेट आवाज़ में बोला। तो आदित्य का दिल थोड़ी तेज़ी से धड़का, क्योंकि उसे नहीं पता वो लड़की आगे क्या बोलने वाली, और वो काफ़ी ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। उस लड़की ने आगे बोलना शुरू किया, ओ माई लव, कहाँ खो गए तुम, कुछ बोलो तो सही। अच्छा रहने दो, सुनो तुम फिलहाल अभी तुम लोग हाईवे वाली रोड पर हो, तुम्हारी कार खराब हो चुकी है, और तुम्हारे साथ तुम्हारा ड्राइवर और तुम्हारी वो सो कॉल्ड प्यारी वाइफ भी है। इसके अलावा ज़रा ध्यान से उसकी तरफ देखो, तुम्हें उसके नेक एरिया पर एक छोटा सा रेड लाइट का डॉट नज़र आ रहा होगा। अब वो किस लिए होता है इतना तो तुम भी जानते हो, इसलिए मुझे कच्चा खिलाड़ी समझने की तो गलती करना मत, और जैसा मैं कह रही हूँ चुपचाप वैसा करो, नहीं तो वो जो रेड लाइट है ना, वहाँ से रेड खून निकलता हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा मुझे। उसकी ये बात सुनकर आदित्य की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई हो, उसे अपने हाथ पर एकदम ठंडे होते महसूस हुए, क्योंकि जब उसने ध्यान से देखा तो उसे सच में सुनैना की गर्दन पर एक छोटा सा रेड लाइट का स्पॉट नज़र आया, जो कि किस तरफ से आ रहा है ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। क्रमशः